भक्ति भक्ति को, मुक्ति मुक्ति को, प्रदात्री प्रदान करने वाली, त्रिभुवन जन इत्रो, त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के दुखों को, दुखों से छुटकारा दिलाने वाली, दुष्टधि दुष्टों का, नाशयित्रीम नाश करने वाली, जनक धरणी पुत्रीम जनक की जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी वह पुत्री, दर्पी सौंदर्य में, दर्पा सूर्य को भी प्रहत्रिम परास्त कर देती है, हरिहर विधि हरि भगवान विष्णु, हर भगवान शिव, विधि था ब्रह्मा जी, कत्री इनकी शक्तियां इनसे ही आती है, नैमी इनके अलावा कोई नहीं, सद शुद्ध, भक्ता भक्ति या भक्त, भत्रिम भरण पोषण करने वाली। तो श्रीमती सीता देवी का यहां पर गुणगान इस श्लोक में किया गया है। जिस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव में अनेकों वैष्णव लोग हैं जो कि भागवतम पर कमेंट्री किए हैं या कृष्ण और श्रीमती राधिका के विभिन्न गुणों का वर्णन किए हैं अपने रिलाइजेशन के अनुसार, वैसे ही श्री संप्रदाय में बहुत से वैष्णव हुए हैं जो कि भगवान श्री राम और जानकी जी के संबंध में लिखे हैं। तो एक महान वैष्णव है साउथ के, जिन्होंने जानकी वल्लभ अष्टकम लिखा है, उसी से यह श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, श्रीमती सीता देवी को नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूं, जो कि सकल कुशल दात्री, जो सबके क्षेम कल्याण या सुख शांति को देने वाली है सबको, भक्ति मुक्ति प्रदात्री, भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है, संसार में तप्त प्राणियों को सुख देने वाली है, जो दुष्टों को नाश करने वाली है, पृथ्वी से जनक जी के द्वारा पुत्री के रूप में जो प्राप्त की गई, जो कांतिमान सौंदर्य को भी प्राप्त करने वाली सुंदरी है, जिनसे ही जिनके ही अंश लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती हैं, जो समस्त भक्तों के भक्ति का भरण पोषण करने वाली हैं, वैसे माता सीता को हम प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्जनमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भीयैवा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषु पुरुषम्। भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम्। सोलं कृषिष्ठं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज। जयति कृष्ण चैतन्या कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज की तिथि बड़ी ही पावन तिथि है कि आज के दिन जगत जननी माता सीता का आविर्भाव हुआ था। इससे पहले एक महीना भगवान श्री राम का आविर्भाव आज के दिन ही हुआ था, जिसे रामनवमी कहते हैं, और एक महीने बाद में सीता जी का आविर्भाव हुआ जिसे सीता नवमी कहते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी, वैसे ही रामनवमी और सीता नवमी है। भगवान श्री राम जिस प्रकार से मर्यादा सिखाने के लिए पुरुषों के लिए आए थे, उसी प्रकार से जगत जननी माता सीता भी स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए एक आदर्श सिखाने के लिए आई थी। माता सीता के जीवन में यदि देखा जाए और उनके आदर्शों का अवलोकन किया जाए, तो हम समझ सकते हैं कि एक आदर्श नारी कैसी होनी चाहिए। यहां पर इस श्लोक में जो वैष्णव प्रणाम करते हैं माता सीता को, हम लोग सर्वप्रथम माता सीता के सैद्धांतिक रूप से उनको समझने का प्रयास करेंगे कि सीता जी हैं कौन, और बाद में लीला परक कुछ कथाओं को हम लोग सुनेंगे। श्रीमती सीता जी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। भगवान श्री राम से वो कभी अलग नहीं हो सकती हैं। जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सूर्य से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से भगवान की शक्ति भगवान से अलग नहीं हो सकती है, अभिन्न है। यहां पर माता सीता के संबंध कहा गया है सकल कुशल दात्री। संसार में सब लोग अकुशल हैं, किसी का कुशलता नहीं है। कुशलता मतलब सब कुछ ठीक ठाक। संसार में तब तक से ठीक ठाक सब कुछ नहीं रहेगा जब तक से माता सीता, श्रीमती राधा रानी इत्यादि की कृपा न हो। लेकिन सीता जी के और राधा रानी के स्पेशली संबंध में जानने से पहले ये जरूरी है कि हम कृष्ण के विषय में जाने, भगवान श्री राम के विषय में जाने। जब कृष्ण के विषय में जानेंगे तो राधा रानी के विषय में अपने आप समझ में आ जाएगा। कृष्ण हमको बतलाएंगे कि राधा रानी कौन है। प्रायः देखा जाता है कि समाज में लोग राधा रानी के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। भक्त लोग भी इमोशनली सरचार्ज रहते हैं और राधा रानी के विषय में खूब जानना चाहते हैं, राधे राधे खूब गाते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इसको इनकरेज नहीं किए। प्रभुपाद ने कहा कि पहले हम लोगों को कृष्ण को जानना चाहिए। भगवान भगवत गीता में जब अर्जुन से उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन भगवान के अंतरंग भक्त हैं, भक्तस्य सखामेति रहस्यमि उद्दतमम्। फिर भी भगवान ने राधा रानी के विषय में एक जगह भी बात नहीं किया भगवत गीता में, सब जगह अपने विषय में था, अहम सर्वस्व प्रभो, अहम सर्व ही देवानाम, अहम अहम अहम, अपने विषय में भगवान बताए, राधा रानी के विषय में नहीं बताए। तो जरूरी है कि हम सर्वप्रथम कृष्ण को जाने, भगवान श्री राम को जाने, तब हम राधा रानी को जान सकते हैं और सीता माता को जान सकते हैं। तो सकल कुशल दात्री, इसका मतलब यह समझना चाहिए सीता जी अकेली नहीं हैं। जब सीता जी ही अकेली सबको सकल सब प्रकार की कुशलता प्रदान करने में सक्षम होती तो रावण के यहां लंका गई थी। रावण को देखा जाए तो उसे कुशलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि राम के बिना सीता जी कभी सुखी नहीं हो सकती है, और जब सीता जी सुखी नहीं है तो रावण को कैसे सुखी कर सकती हैं। तो आजकल के जितने रावण हैं जो लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहते हैं, संपत्ति को, जो सीता जी की कत्री हैं, सीता जी से उत्पन्न हैं, वे लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन सुखी नहीं हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि राम को अंगीकार नहीं किए हैं, केवल सीता को ही अंगीकार करना चाहते हैं जैसे रावण। जब सीता जी स्वयं सुखी नहीं थी तो रावण कैसे सुखी कर सकती थी? लेकिन यही यदि वही रावण राम का सेवा करता, राम का भजन करता, तो सीता जी हाथ पर जोड़ करके वहीं पर बैठी रहती, उसको सब प्रकार से सुख शांति देती। तो जिस व्यक्ति को सुख शांति चाहिए सीता जी जरूर देंगी। सकल कुश दात्री, वो घरवारिन है भगवान राम की, जरूर देगी, लेकिन कब देंगी? जब हम राम को अपनाएंगे तब। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग राम राज चाहते हैं, राम को नहीं चाहते हैं, सीता को चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते हैं। ये हुआ रावण मेंटालिटी। तो लोगों में रावण मेंटालिटी है। तो जिसको भी कुशलता चाहिए, क्षेम चाहिए, कल्याण चाहिए, सुख शांति चाहिए, उसे सीताराम का भजन करना चाहिए, राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का भजन करना चाहिए, अकेला नहीं। इसीलिए हम लोगों के प्राण धन हैं राधा कृष्ण। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जन्म मरणे गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण इत्यादि। तो कुशलता तब प्राप्त होगी जब राधा और कृष्ण या सीताराम जी का साथ में भजन किया जाए। और जब भजन करेंगे कुशलता तो प्राप्त होगी ही। कहते हैं भक्ति मुक्ति प्रदात्री। श्रीमती राधिका, श्रीमती सीता देवी भक्ति प्रदान करने वाली हैं भगवान श्री राम के चरणों में, और भौतिक संसार के दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। भक्ति वह साधन है, भक्ति मुक्ति प्रदान, मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति करता है मुक्ति तो उसे मुफ्त में प्राप्त हो जाती है, उसके लिए अनायास कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, सुख शांति मुक्ति ये आ जाती है। तो भक्ति मुक्ति प्रदात्री, दुख से निवारण और भक्ति देने वाली हैं श्रीमती इत्यादि। त्रिभुवन जन जनयित्रो, संसार में सब लोग दुखी हैं, चाहे ब्रह्मा से ले हो चाहे चिट्टी, ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत सब लोग संसार में त्रस्त हैं, और सबके त्रस्तता को दूर करने के लिए, सबको सुख प्रदान करने के लिए ही सीता जी आई हैं, श्रीमती राधिका आई हैं। त्रस्तता किससे हैं? दैहिक दैविक भौतिक ये तो तीन प्रकार के दुख हैं जो हमें दुख देते हैं। यहां पर स्पेसिफिकली कहा गया है दुष्टधि नाशयित्रिम, दुष्टों के द्वारा। दुष्टों का यह स्वभाव होता है कि सज्जन पुरुषों को परेशान करते रहते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है जब सज्जन पुरुष दुखी होते हैं, ये दुष्टों का स्वभाव है। खोज खोज करके सज्जन पुरुषों को दुख देते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस, ये सब लोग दुष्ट प्रकृति के थे। सज्जन पुरुष गलती ही क्या करते हैं, एक ही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? भगवान का भजन करते हैं, विष्णु का भजन करते हैं, सबसे बड़ा गलती करते हैं। इसीलिए दुष्टों को अच्छा नहीं लगता है तो परेशान करते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम लोगों को दंड दूंगा। तो दुष्टधि नाशयित्रिम, दुष्टों को प्रायः भगवान अपने शक्तियों के द्वारा नाश करा देते हैं। भगवान नहीं मारते हैं दुष्टों को, भगवान तो कृष्ण, कृष्ण पुतना को या अन्य जितने भी हैं, कृष्ण को आनंद आता है भक्तों को आनंद देने में, दुष्टों को मारने में उन्हें आनंद नहीं आता है। लेकिन भगवान की अनेक शक्तियां हैं जो शक्तियां दुष्टों का संहार करती है। दुष्टधि नाशयित्रिम, दुष्टों को नाश करने वाली। जनक धरणी पुत्री, श्रीमती सीता देवी के अनेक नाम हैं, एक नाम है धरणी पुत्री, पृथ्वी की पुत्री। दूसरा नाम है जानकी, तीसरा नाम है मैथिली, सीता, रामा, वैदेही इत्यादि इत्यादि। यहां पर कहा गया है जनक धरणी पुत्री, जनक महाराज को धरणी ने अपने पुत्री को अर्पण किया था, यानी जनक महाराज और धरणी की जो पुत्री थी। जनक महाराज की पत्नी जो थी उनका नाम था महारानी सुनैना। लेकिन कथा इस प्रकार से जाता है कि महाराज जनक वास्तव में जिसको सीता जी प्राप्त हुई, जिस जनक को, उनका नाम था धर्मध्वज। दो भाई थे, एक का नाम था कुशध्वज और दूसरे का नाम था धर्मध्वज। तो महाराज धर्मध्वज की दो पुत्रियां हुई, एक दत्तक पुत्री थी सीता जी और दूसरी पुत्री थी उर्मिला। जनक एक टाइटल है, विदेह राज निमि को कोई संतान नहीं था, उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम पड़ा जनक। और बिना जो बिना पिता का हो, और उनके खानदान में और जितने भी आए उन लोगों का नाम जनक पड़ा। इसीलिए सीता जी का एक नाम है जानकी। और धर्मध्वज मिथिला के राजा थे जो बिहार में पड़ता है और कुछ भाग तो चला गया है नेपाल में, तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर, वहां मैथिली भाषा बोली जाती है, तो सीता जी का जन्म वहां हुआ था इसलिए उन्हें मैथिली कहा गया। और सीता, एक समय की बात है, कई एक प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि महाराज जनक के राज्य में एक बार बहुत अकाल पड़ा था और राजा का काम है कि प्रजा को सुख शांति देना, अकाल पीड़ा से दूर करना। पहले स्टोरेज नहीं थे, आजकल अन्न के स्टोरेज हैं, पहले लोग स्टोर नहीं रखते थे, आजकल आप वृंदावन से दिल्ली ड्राइव करो तो रास्ते में चाहे आगरा तरफ कितने कोल्ड स्टोरेज हैं आलू स्टोर करने के लिए। ऐसे ही बहुत बहुत स्टोर हैं जहां पर अन स्टोर किया जाता है गेहूं धान चना इत्यादि। पहले स्टोरेज नहीं होता था। स्टोर करना किसी वस्तु को शास्त्र में इसे अच्छा नहीं कहा गया है, किसी वस्तु को स्टोर करना। जो व्यक्ति स्टोर करता है उसे गिद्ध कहा जाता है। इस उपनिषद में वर्णन किया गया है, ईसा वास इदम सर्वम यत्किंचित याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कश्चनिधनम कश्चनिधनम। स्टोर नहीं करना चाहिए। स्टोर जो करता है वह वास्तव में आश्रिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो भागवतम में कथा है ना, जिसने बहुत से, कौन असुर था जो बहुत से राजकुमारियों को स्टोर किया था? भौमासुर। तो ये सब लोग भौमासुर के नाती पोते हैं जो स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? कि अभी अभी फसल कटी है, कम दाम है, स्टोर करेंगे तो बाद में जब कमी हो जाएगी तो ज्यादा दाम बेचेंगे। इसीलिए भी ना, अगेन मा गृद कश्चनी धनम, ग्रीड, ग्रीड के चलते। और ग्रीडी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। कहते हैं गॉड प्रोवाइड्स फॉर नीडी नॉट फॉर ग्रीडी। तो हम लोगों को ग्रीडी नहीं होना चाहिए। तो पहले जमाने में स्टोर नहीं किया जाता था कोई वस्तु। तो अकाल पड़ गया था इसका मतलब उसमें स्टोर नहीं था। आजकल बड़े प्राउडली गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम लोगों के पास इतने साल का पेट्रोल का स्टोर है, इतने साल का अन्न का स्टोर है। ये सब क्यों? क्योंकि भगवान पर डिपेंडेंस नहीं है। यदि भगवान पर डिपेंडेंस होगा तो स्टोरेज का समस्या नहीं रह जाएगी, फिर स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह प्रमाणित करता है कि महाराज जनक के समय स्टोर नहीं था, स्टोरेज सिस्टम नहीं था। जब अकाल पड़ गया, आज से 30-40 साल पहले तक जब अकाल कभी पड़े था, वर्षा नहीं होता था, तो गांव के किसान लोग सब बैठ करके अखंड हरि का नाम कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अखंड कीर्तन करते थे। यदि गांव के लोग स्टोर भी करते थे तो केवल बीज स्टोर करते थे बस, है? उसको बोने के लिए बीज स्टोर करते थे और कुछ नहीं। तो महाराज जनक के समय भी स्टोरेज सिस्टम नहीं था। जैसे कीर्तन कर करके लोग वर्षा बढ़ाते बढ़ाते होता था, उस समय भी कीर्तन किया गया होगा, लेकिन किसी प्रकार से वर्षा नहीं हो पा रहा था। और कारण क्या था उस समय वर्षा नहीं होने का? क्योंकि जगत जननी सीता के आविर्भाव का समय था। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है सीता जी के संबंध में कि किस प्रकार से उनका आविर्भाव हुआ। पूर्व जन्म में एक समय रावण घूम रहा था और घूमते 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 हिमालय के तराई में पहुंचा, तो वहां पर देखा कि एक बड़ी सुंदरी नवज्योति तपस्या कर रही है, तपस्या में लीन है, जिसका बाल जटाजुट हो गया था, शरीर पर मृच्छैल धारण की थी, लेकिन उसकी कांति इतनी सुंदर थी कि कोई व्यक्ति भी मोहित हो सकता था। तो वहां पर जब रावण आया तो उस सुंदरी लड़की को देखा तो वह काम से विभूतित होकर के उसके पास गया और उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम क्यों तपस्या में मग्न हो? ये तुम्हारा ये जीवन तपस्या के लिए नहीं है। आज भी लोग कहते हैं ना, भजन पूजन तो बूढ़े लोगों के लिए है, जवान लोग क्या भजन करेंगे है? तो रावण भी यही फिलोसफी झाड़ रहा था कि तू कहां लग गई है भजन पूजन करने में। अरे तुम तो नवज्योति हो, तुमको तो इंजॉय करना चाहिए, देखने में सुंदर हो, कैसा भी तुम्हें पति प्राप्त हो सकता है, तुम कौन हो और इस प्रकार से तपस्या क्यों कर रही हो? तो रावण के बात को सुन करके वह नवज्योति कहती है, पिता कुश ध्वजो नाम पिता ब्रह्मर्षिर्मित प्रभ बृहस्पति सुत श्रीमान बुधया तुल्यो बृहस्पति। कहते हैं अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज हमारे पिता हैं। पिता कुशध्वजो नाम पिता ब्रह्मर्षि इति प्रभ। जो अमित तेजस्वी हैं, ब्रह्मर्षि हैं, वे हैं मेरे पिता, जिनका नाम है कुशध्वज। बृहस्पति सुत श्रीमान वे बृहस्पति के पुत्र हैं, और बुधया तुल्यो बृहस्पति, और ज्ञान में देवगुरु बृहस्पति के समान ही ज्ञानी भी हैं। मैं उनके यहां उत्पन्न हुई, जब मैं बड़ी हुई तो मेरे सौंदर्य को देख करके बड़े बड़े देवता गंधर्व यक्ष राक्षस नाग सबके सब लोग एक के बाद एक आए मेरे पिताजी के पास मेरा हाथ मांगने के लिए। लेकिन मेरे पिताजी प्रण कर लिए थे कि मैं अपने पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से ही कराऊंगा, और इसीलिए जितने लोग भी आए दामाद बनने के रूप में, दामाद बनने की चाह से, सबको वो ठुकरा दिए कि नहीं, हमारा दामाद तो मैं चुन लिया हूं, वे हैं भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को ही मैं दामाद के रूप में दूंगा, स्वीकार करूंगा। एक दैत्य था, उसका नाम था शंभु। वह दैत्य राज शंभु भी आया, वह कभी किसी से ना सुनना नहीं चाहता था। हम लोग भी में हैं, कभी कभी हम ना नहीं सुनना चाहते हैं, उसमें ना सुनने की आदत नहीं थी, वो हां सुनना चाहता था। जब कुशध्वज जी उसको ना कर दिए कि नहीं नहीं मेरे पुत्री का विवाह जब होगा तो होगा केवल विष्णु से और किसी से नहीं, तो गुस्सा में आकर के वह दैत्यराज महाभिमानी क्रोध पूर्वक उनका गला काट डाला। जब गला काट दिया तो उनकी इसकी लड़की की वेदवती की मां बेचारी दुखी हो गई और रोने लगी। हां, इसका कन्या का नाम था वेदवती है, पिता का नाम कुशध्वज। तस्याहं कुर्वतो नित्यं वेदाव्यास महात्मनः संभूता वाङ्मयी कन्या वेदवती अस्मिता। मुझे वेदवती कहा जाता है, उन्हीं महान महापुरुष तेजस्वी ब्रह्मर्षि कुशध्वज की मैं पुत्री हूं। जब पिता का गला काट दिया शंभु, तो मेरी मां पिता के वियोग में प्राण त्याग दी, और मैं पिताजी के इच्छा को पूरा करने के लिए ये तपस्या कर रही हूं, क्योंकि पिताजी की इच्छा थी कि मेरा विवाह भगवान विष्णु से हो, इसीलिए मैं पिता के प्रसन्नता के लिए विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हूं। इतना सुनकर के रावण हट्टास किया, बहुत जोर से हंसा, कहा विष्णु, तू विष्णु का बात करती है? कभी देखी हो विष्णु को? कोई देखा है? लोग ऐसे बात करते रहते हैं, अरे विष्णु नाम का कोई प्राणी नहीं है। मायावाद सिद्धांत का प्रतिपाद करना, जो जोर से मायावाद सिद्धांत का वह प्रवचन करने लगा, और इस प्रकार से भगवान विष्णु का वो तिरस्कार किया और कहा जिस विष्णु के विषय में लोग बात करते हैं उसके पास इतना धन है, ऐसे चलता है, यह करता है, अरे उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है, उसके पास तो एक शीश है, मेरे पास 10 शीश है, यानी मेरे पास सब कुछ उसे 10 गुना है, उससे मैं सुंदर हूं, बलवान हूं। इस प्रकार से अपने मुंह से अपना बड़ाई जब करने लगा रावण, ऐसे भी वेदवती का थोड़ा भी इच्छा नहीं था उसकी तरफ देखने के लिए भी, उसका बात सुनना तो दूर रहा। और जब अपने मुंह से अपना बड़ाई करने लगा तो वेदवती समझ गई तो बिल्कुल नीच आदमी है। जब कोई अपने मुंह से अपना बड़ाई करने लगता है तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति बहुत नीच है, इसको कोई सम्मान नहीं करता, इसलिए अपना बड़ाई चाहता है अपने मुंह से। और कोई बड़ाई नहीं करने वाला होता तो अपने मुंह से करता है। आजकल लोग पैसा कितना खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट करा करके अपना बड़ाई कराने के लिए, पेपर में अपना फोटो छपवाते हैं कहां कहां अपने बड़ाई के लिए पैसा खर्चा करते हैं। अरे भैया वही पैसा खर्चा करो कुछ सामाजिक काम करने में, चाहे एक मंदिर बनवा दो, क्या तकलीफ है, बहुत बड़ाई हो जाएगी। एक बड़ा मंदिर बनवा देगा तो बहुत बड़ा है, नाम नहीं, चाहे कृष्ण भावना में ज्वाइन कर करके प्रचार करो, बहुत बड़ाई हो जाएगा। जब नेम फेम ग्लोरी ही चाहिए तो प्राप्त हो जाएगा। भागवतम में वर्णन किया गया है 8वें स्कंद में कि कोई व्यक्ति जुआ में, व्यापार में, व्यसन में अपना धन गंवा डालता है, सब लोग उसे कंडेम करते हैं, कोई उसका नाम नहीं लेना चाहता है। कोई गरीब बन जाए, कंगाल बन जाए, बिजनेस फेल हो जाए, या बस व्यसन कर करके जुआड़ी बन करके, कोई उसका नाम नहीं लेना चाहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपना धन सर्वस्व भगवान को दे करके कंगाल बन जाता है तो उसका खूब नाम होता है। जैसे बलि महाराज, बलि महाराज सब कुछ दे दिया भगवान विष्णु को, उनका नाम दानी शिरोमणि हो गया, दानियों में सर्वश्रेष्ठ हो गए बलि महाराज। तो जब नाम का बड़ाई करना है दे करके, पैसा डाल कर करके, तो ला करके हरे कृष्ण मंदिर में डाल दो, क्या तकलीफ है? और नहीं तो 2-4 लाख पुस्तक लेकर के वितरण करा दो। तो इस प्रकार से भगवान के प्रचार के कार्य में जो व्यक्ति धन का व्यय करता है, खर्च करता है, वो व्यय नहीं अव्यय हो जाता है, या समाज के कार्य के लिए इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से नाम होता है। लेकिन जो अपना नाम छपवाने के लिए धन खर्चा करता है, सही में लो क्लास का आदमी है, रियली लो क्लास का आदमी है। लोग दान भी देते हैं अपना नाम कमाने के लिए। ये सत्य घटना है। वृंदावन में जब मैं प्रेसिडेंट था तो एक बार एक सिंधी भाई था, सॉरी, एक व्यक्ति थे, वो कुछ पंखा दान दिए थे और अपने पिताजी के नाम से। तो 15 दिन बंबई था, 15 दिन वृंदावन होता था मैं, तो गर्मी का दिन था, मैं गया था और सौभाग्य दुर्भाग्य बस मैं ही उस दिन क्लास दे रहा था। तो हिंदी क्लास अलग होता है। तो क्लास के बाद आया और कहा कि जो मैं पंखा दान दिया था, पंखा आप लगवाए कि नहीं? मैं कहा लगवाया हूं ना। कहां लगाए हैं? कहा यहीं पर लगाया हूं। कहा तो दिखाई नहीं पड़ता कि पंखा चल रहा है। कहा नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मेरे पिताजी का नाम है कि नहीं। मैं कहा वो भी लिखा हूं। कहा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं कहा पंखा चल रहा है ना, यानी कहने का मतलब पंखा बंद करो तो उस पर नाम दिखाई पड़ेगा, चलेगा थोड़ा दिखाई पड़ेगा। तो कहा कि मैं अपने पिताजी के नाम के लिए दान दिया था। तो ऐसे लोग हैं, नाम कमाने के लिए दान देते हैं। तो जब रावण अपने मुंह से अपना बड़ाई कर रहा था, सीता जी सॉरी वेदवती समझ गई कि नीच व्यक्ति है, इसे बात करने में भी कोई फायदा नहीं, जितना पूछा उतना ज्यादा हो गया। अब वेदवती चुप हो गई। बहुत प्रयास किया रावण, लेकिन वेदवती जब कुछ नहीं बोली तो उसे गुस्सा हुआ कि मैं इतना बड़ा महान व्यक्ति हूं और मेरे बात का तिरस्कार कर रही है। तो इतना कामातुर हो गया, कहा जाता अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृत प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ते नरक असुचौ। जो असुर होते हैं अपवित्र नरक में पड़ जाते हैं, कहते प्रसन्नता काम भोगेशु, टू मच अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, काम भोगेशु, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। जायतो विषयान पुंसा संग संजायते संगा संजायते कामात कामात क्रोध बुजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति भ्रम स्मृति भ्रम बुद्धिनाशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इसका भी अब पतन हो गया। तो उसने क्या किया कि अपने हाथ से जबरदस्ती वेदवती का जटाजुक्त जो बाल था उसको पकड़ लिया, यानी किडनैप करने का प्रयास किया। जब बाल पकड़ लिया तो वेदवती अपने को बहुत इंसल्ट फील की, क्योंकि उसका शरीर उसका सब कुछ उसके पति के लिए था, भगवान विष्णु के लिए था। दूसरा कोई स्पर्श करे सती स्त्री कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से वेदवती तुरंत अपने हाथों से जिस जहां जो बाल पकड़ा था तुरंत काट डाली, यानी उसका जो ये तलवा था वो तलवार का काम किया, तुरंत काट डाली। और काट कर करके ततो वेदवती क्रुद्धा केश केशान हस्तेन संचित असी भूतवा करह तस्या केशा छिन्नास्तदा करोत। ततो वेदवती क्रुद्धा, क्रोध के मारे वेदवती उस केश को जिसे रावण पकड़ा था, कहते हैं असी भूतवा करह, असी मतलब तलवार, भूतवा मतलब हो गया, करह मतलब हाथ, उसका हाथ कैसे हो गया तलवार के समान हो गया, और तुरंत उसको वो काट डाली। और गुस्सा से इतने रोषित हुई थी, गुस्सा से प्राणेश्वर हो गया, सामने बैठे पीछे बात करो कोई बात नहीं, सामने बैठकर बात करो दिखाई पड़ता है, वो गुस्सा में आई और गुस्सा से अग्नि प्रज्वलित की, कहती सा ज्वलंती व रोषेण दहंती व निशाचरम वाच अग्नि समाधाय मरणाय कृतत्वरहा। कहती है कि हे मूर्ख, तूने मेरा तिरस्कार किया है, तू मुझे स्पर्श किया है, मैं अभी अग्नि प्रज्वलित की हूं और मैं समाधाय मैं समाधि में स्थिर होकर के अग्नि में प्रवेश कर करके और अपने शरीर को मैं त्यागूंगी। यस्मात् तू धर्षिता चाहम त्वया पापात् मना बने तस्मात् तव बधार्थम ही समुत्थेस्त ही अहम पुनः। कहते हे मूर्ख, तूने इस एकांत में वन में मुझे अबला समझ कर करके मेरा अपमान किया है, धर्षिता अपमान किया है, इसके लिए तस्मात् तव बधार्थम तुम्हारे बध के लिए ही मतलब निश्चित ही सम उत्पन्ने पुनः मैं आऊंगी जन्म लूंगी ही अहम पुनः, मैं ही आऊंगी तुम्हें बध करने के लिए, तुम्हारे बध का कारण मैं बनूंगी। और इतना कह करके और वह प्रवेश कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। कालांतर में लंका में समुद्र में, लंका के चारों तरफ समुद्र है, वहां पर कमल के पुष्प पर यह वेदवती जन्म ली और रावण उस दिन मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, तो देखा कमल का सुंदर पुष्प और उस पर एक लड़की। अब इसको लेकर के राजमहल गया और अनायास ही रावण की स्मृति कुछ ऐसे होने लगी, देख करके कामातुर हो गया, छोटी बच्ची को भी देख करके। जब लेकर के गया मंत्रियों को दिखाया तो कुछ ऐसे मंत्री थे जिनके पास फेसबुक था, फेस पढ़ने का वो देख करके बता सकते कि आजकल भी बहुत से ऐसे हैं। मैं जानता हूं एक भीलवाड़ा के नदी की एक जगह है जहां पर एक हैं वो भृगुवंशी, भृगु है ना, वो चेहरा देख करके बता सकते हैं कि पूर्व जन्म में क्या थे क्या था, कुछ बता सकते थे। तो रावण के भी तो गुरु लोग भृगुवंशी ही थे ना, तो उसके मंत्री लोग थे भृगुवंशी लोग। तो उन्होंने देखा, लड़की को देखा और देखकर सब समझ गए और कहे कि महाराज आंख को अपने हाथ में रखो, जल्दी फेंक दो, ये आपके विनाश का कारण होगी। तो रावण ने क्या किया, सोचा कि इसको मार डालना चाहिए, तो मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मार पाया। तो वह क्या किया, उस लड़की को एक मिट्टी के, नहीं मिट्टी नहीं, सोने के बर्तन, रावण के जमाने में मिट्टी नहीं था, मिट्टी का बर्तन नहीं था, आजकल तो प्लास्टिक का है। आज से पहले कुछ दिन कम से कम मिट्टी का बर्तन, पहले मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते, चावल बनाते, दाल बनाते, बाद फेंकते थे, उसके पहले था पीतल का है? लेकिन रावण के जमाने में सोने का था, सब कुछ था, सोने का लंका, सब कुछ सोने का था। तो सोने के कलश में वो डाल करके और समुद्र में डाल दिया। ऐसे दुष्ट होते हैं बच्चों को मारने के लिए। कानपुर की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। एक व्यक्ति था, उसे अपने भाई से बैर हो गया खेत को लेकर के। तो उसने क्या किया, अपने भाई के 10 साल के बच्चे को उठाया और बच्चे का हाथ पैर बांध दिया और मुंह में सेलो टेप लगा दिया, सेलो टेप लगा दिया। ये सत्य घटना है, 2-5 साल पहले का बात है, हम लोग कानपुर गए उसे 2 साल पहले का। और 10 फीट करीब गड्ढा खोद कर करके और उस बच्चे को उस गड्ढे में डाल दिया, जीवित बच्चे को, हाथ पर बांध दिया था, मुंह बंद, नाक सांस ले रहा था बच्चा, मुंह बंद कर दिया था, बोल नहीं सकता कुछ भी, और रात का समय था, गड्ढे में डाल दिया था। तो ये रावण के प्रकृति के आज भी लोग हैं, आजकल तो प्राय बहुत लोग हैं ऐसे, एक ही नहीं है। तो रावण एक था जो कि उस कन्या को डाल दिया। अन्यत्र कथा आती है कि रावण जब अत्याचार कर रहा था ऋषियों पर, तो ऋषियों का वध कर करके उनका खून बिटुरता था और खून को सोने के कलश में डाल करके और पृथ्वी में गाड़ दिया था। लेकिन इसका कोई हमें कहीं पर नहीं मिला, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह है कि उस सोने के कलश को समुद्र में डाल दिया और वही माता पृथ्वी स्वीकार की। और कालांतर में जब अकाल पड़ गया, लेकिन दोनों बड़ा सारगर्भित है, वो कथा भी सारगर्भित है कि ऋषियों के खून को ला करके रावण जनकपुर में गड़ा था जान करके कि वहां अकाल पड़े इत्यादि, यानी कोई भी कारण हो अकाल पड़ गया। तो उस दिन महाराज जनक अपने हाथ से हल चलाने गए, क्योंकि हल से अनुत्पन्न, और पहले उस समय का वो यज्ञ था, यज्ञ के लिए हल चला रहे थे। प्रजन्याद अन्य संभवात, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा होता है यज्ञ से, तो यज्ञ के रूप में वो हल चलाने गए वर्षा के लिए। और अन्न के लिए खेती जरूरी है, तो यज्ञ कैसे कर रहे थे, हल चला करके। हल में जो आगे का भाग होता है लोहे का, कितने लोग हल देखे हो, तो हाथ उठाओ, तो जो गांव वाले हल देखे होंगे, शहर वाले हल नहीं देखे होंगे, है ना, शहर वाला नहीं देखा है ना, देखा है, उसमें लोहे का एक होता है जो कि खेत को चीरता है, जिसे हराई बनती है, है? हल से हराई बनती है। तो जब जनक महाराज हल चला रहे थे तो उस हराई से उसे, उस हल के अग्रभाग जो होता है उसे शीत कहते हैं, तो उसे सीता जी उत्पन्न हुए, सीत से उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा सीता। इस प्रकार से जनक जी लेकर के आए सीता जी को। और वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया है। और ये हुई सीता जी, और यज्ञ के परिणाम स्वरूप वर्षा दे तो हुआ ही, कालांतर में महाराज जनक को एक पुत्री भी प्राप्त हुई जिसका नाम पड़ा उर्मिला। और भगवान श्री राम की अर्धांगनी होने के चलते इन्हें रामा भी कहा जाता है। और महाराज जनक बिल्कुल सन्यासी थे, सुखदेव गोस्वामी भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने गए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा विदेह। और विदेह राज जनक की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम पड़ा वैदेही। तो जनक धरणी पुत्री, जनक महाराज और धरणी यानी पृथ्वी की ये पुत्री थी। दर्पी दर्प प्रहत्री, सौंदर्य में कहा गया है दर्पी, सुंदरता तो इनमें ऐसी थी कि दर्प, जिनमें दर्प था, जिनमें सौंदर्य था संसार में, उनको भी प्रहत्री प्राप्त करने वाला था, पीछा छोड़ने वाला था, खत्म मतलब प्राप्त करने वाला था। ऐसी सुंदरी थी श्रीमती सीता जी, बड़ी सुंदर थी। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे सीता जी का पता लगाने के लिए, तो भगवान श्री राम से पूछे कि प्रभु वहां पर तो बहुत सी स्त्रियां हैं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी माता यही है, सीता जी यही हैं। तो भगवान श्री राम सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करने लगे। जब सीता जी के सौंदर्य का वर्णन, दर्प का जब वर्णन करने लगे, तो हनुमान जी ने राम 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 राम, मैं ये नहीं सुनना चाहता हूं, अरे मैं बाल ब्रह्मचारी ठहरा, आप ये क्या वर्णन कर रहे हैं, हैं स्त्रियों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, अरे हमको ब्रह्मचारी ही रहने दीजिए, ये मत समझाइए हमको, बताइए मैं कैसे पहचान सकता हूं सीता जी को। वास्तव में भगवान श्री राम हनुमान जी को टेस्ट कर रहे थे, हनुमान जी को शरीर से क्या लेना देना, ब्रह्मचारी को सौंदर्य से क्या लेना देना। खूब भगवान श्री राम वर्णन कर रहे थे, देखने में बड़ी सुंदर हैं, सुंदर केश हैं, लंबी हैं, जो भी स्त्रियों का सौंदर्य होता है भगवान राम वर्णन कर रहे थे, क्योंकि दर्पिणी थी, दर्पी दर्प प्रहत्री, जितने भी सुंदर लोग थे उसमें सबसे सुंदर थी। भगवान राम वर्णन करने के बाद कहते हैं कि सबसे सुंदर है हनुमान जी का, राम राम ये मत बताइए हमको, असली बात बताइए। तब भगवान श्री राम सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किए कि सीता जी जहां भी होंगी वो मेरे नाम का कीर्तन करती होंगी, राम राम राम। और उतना ही नहीं, जहां पर होंगी उस वातावरण में सर्वत्र पशु पक्षी लता पता, वहां से साउंड वाइब्रेशन, ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन आता होगा। यही सीता का पहचान है, यही भक्त का पहचान है। भक्त वही है जो निरंतर भगवान का नाम लेता हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भक्तों के भक्ति का पहचान होता है भगवान के नाम से। जहां पर भगवान का नाम होता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तो गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभ्यांतर शुचि, सब प्रकार से नाम पवित्र कर देता है। लोग प्रायः कहते हैं कि महाराज आपके मंदिर में जाते हैं तो बड़ा शांति मिलती है, इसलिए शांति मिलती है कि यहां भगवान का नाम लिया जाता है, कीर्तन होता रहता है। जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है, जो व्यक्ति लेता है, वो सब के सब पवित्र हो जाते हैं। तो सीता मैया का असली पहचान जो था, भगवान श्री राम ने बताया कि वह निरंतर मेरा नाम लेती होंगी, और जिस स्थान पर होंगी वह स्थान पावन हो गया होगा, और वहां पर मेरे नाम का कीर्तन होता, लता पता सब के सब। सही में वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया, जब जहां पर जब रावण आता था तो उसके निशाचरी लोग सरचार्ज हो जाती थी सीता जी के अगेंस्ट में, लेकिन जब ही रावण वहां से गया उस संघ का कितना प्रभाव पड़ता था, रावण का प्रभाव पड़ता था तो दम अपना जोश दिखाने लगती थी तलवार लेकर के भाला लेकर के सीता को डराने के लिए, लेकिन जब ही रावण गया सीता जी के प्रभाव में सब हरे कृष्ण का डिवोटी बन जाती थी, सब हरे कृष्ण बोलती थी, वहां कीर्तन होता था। वैसे ही प्रहलाद महाराज जब ही संड और अमर्क स्कूल छोड़ करके गए, प्रहलाद जी सबको भगत बना दिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये है भक्तों का गुण, भक्तों का गुण यही है कि निरंतर कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। महाप्रभु ने बताया था, जहार मुख कृष्ण नाम सहित वैष्णव, जिसके नाम से निरंतर कृष्ण का नाम आता है वही वैष्णव है। तो सीता जी परम वैष्णवी हैं। तो यह पहचान था हनुमान जी को पहचानने के लिए सीता जी को। तो दर्पी दर्प प्रहत्री सौंदर्य को भी फीका करने वाली थी। बाहरी जो सौंदर्य है ये दर्प का एक दूसरा अर्थ होता है अभिमान भी, तो ये अभिमान का कारण हो सकता है। चार प्रकार के दर्प बताए गए हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान अधोपमान, ये चार दर्प हैं, चार अभिमान हैं। जन्म ऊंच कुटीम ऊंच कुल में जन्म, ब्राह्मण परिवार में जन्म, पहले ब्राह्मण परिवार या क्षत्रिय परिवार में जन्म को ऊंच कोटि में जन्म कहा जाता था। आजकल बिलगेट के घर में जन्म हो जाए या अंबानी के परिवार में जन्म हो जाए, बिरला परिवार में जन्म हो जाए तो इसे कहेंगे ऊंच कुल में जन्म लिया। ये परिभाषा बदल गया है आजकल है ऊंच कुल में जन्म लेने का। पहले ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो जन्म ऐश्वर्य धन संपत्ति भी दर्प का कारण है, अहंकार का कारण। जन्म ऐश्वर्य श्रुत पीएचडी पास कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, खूब पढ़ाई कर लिया, डबल डिग्री सब प्राप्त कर लिया, वो भी अभिमान का कारण होता है। साइंसिस्ट बन गया अभिमान का कारण होता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी और सौंदर्य, यहां पर दर्प सौंदर्य, ये सब बाहरी है। ये सब सौंदर्य जो है ये बाहरी सौंदर्य है, आंतरिक सौंदर्य जो है वह है भगवान का भक्ति। जिसके पास आंतरिक सौंदर्य जिसके पास भक्ति है वो सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। तो सीता जी उसी प्रकार से सर्वसुंदरी थी, सर्वसुंदरी थी। हरिहर विधि कत्री का मतलब जन्मना, उत्पन्न होना, और त्रि मतलब है तीन। ये तीन लोग जिनकी शक्तियां हैं लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती, जिन तीनों के शक्तिमान स्वरूप हैं वह हैं सीता माता। नैमी मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, सदभक्त भत्रीम जो भक्तों के भक्ति का भरण पोषण करने वाली माता सीता है। माता सीता भक्तों के भक्ति को भरण पोषण करती हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर में थे तो दक्षिण मथुरा जब पहुंचे, आज के दिन उसे मदुराई कहा जाता है, तो वहां पर एक ब्राह्मण से मिले जिसका नाम था रामदास विप्र। रामदास विप्र भगवान चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया अपने घर पर भोजन ग्रहण करने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। तो भगवान चेतन महाप्रभु गए नहाने के लिए और नहा वहा करके आए। जब नहा वहा करके आए तो अभी तक से ये ब्राह्मण भोजन नहीं बनाया था, भोजन नहीं बना था और बेचारा रो रहा था। तो भगवान चेतन महाप्रभु, क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो, आपने अभी तक से भोजन भी नहीं बनाया। तो ब्राह्मण कहा, देखिए हम तो जंगल में रहने वाले हैं, हम लोग तो जंगली हैं, फल फूल पर जीवन निर्वाह करते हैं। अरे जब लक्ष्मण जी जाकर के सब्जियां और फल लेकर के आएंगी तब सीता मैया रसोई बनाएंगी। अब ब्राह्मण के भाव को सुनकर के भगवान चेतन महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद में ब्राह्मण अपने एक्सटर्नल कॉन्शसनेस में आया और फटाफट किसी प्रकार से कुछ थोड़ा बहुत बना करके भगवान चेतन महाप्रभु को खिलाया, लेकिन अपने नहीं खाया, अपने नहीं खाया। जब अपने नहीं खाया तो भगवान चेतन महाप्रभु देखे कि बेचारा बिल्कुल खाया नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि आप बड़े दुखी लगते हैं, आप खाना पीना छोड़ दिए हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्रभु कहे विप्र कहे कर उपवास के न ये तो दुख के न कर उदास। महाप्रभु कहते हैं वाइल द ब्राह्मण वाज फास्टिंग श्री चेतन महाप्रभु आस्क्ड हिम, व्हाई आर यू फास्टिंग, व्हाई आर यू सो अनहैप्पी, व्हाई आर यू सो वरीड। विप्र कहे जीवन मोर नाही प्रयोजन, अग्नि जल प्रवेशिव छाड़ीब जीवन। कहते मैं जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रह गया, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि अग्नि प्रज्वलित हो और मैं अपना शरीर उसी में त्याग दूं। तो महाप्रभु का भाई बात क्या हो गया, आखिर क्यों ऐसा आप चाहते हैं, कहीं मुझसे तो कुछ गलती नहीं हो गई ना, आपका ध्यान तोड़ दिया, क्या होगा क्या होगा। कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी राक्षस स्पर्श तारे है तो यहां काने सुनी। मैंने सुना है कि महालक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी की भी आग आ रहे हैं, वो महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी को राक्षस राज रावण ने स्पर्श किया। यहां काने सुनी, मैंने सुना है? और यही मेरे दुख का कारण है कि वह दुष्ट रावण कैसे जगत जननी सीता का स्पर्श भी कर सकता है। हाउ ही डेयर टू टच मदर सीता। इसीलिए मेरा शरीर जल रहा है। चेतन महाप्रभु सुन करके मुस्कुराए और कहे कि देखिए आप कृपा करके इसके लिए चिंता न करें, आप तो प्रख्यात पंडित हैं, आप थोड़ा इस केस के संबंध में समझने का प्रयास करें। सीता जी भी भगवान श्री राम की परम प्रियतमा हैं, उनका जो स्वरूप है कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। सीता देवी को अपने भौतिक दृष्टि से कोई देख भी नहीं सकता है, छूना तो दूर रहा। कौन ब्राह्मण का तब इसका मतलब क्या, रावण ने चोरी किया वो कैसे कर सकता है। तो भगवान राम ने कहा, सॉरी भगवान चेतन महाप्रभु ने कहा कि असली सीता को चोरी नहीं किया। असली सीता तो जिस दिन रावण आया था सीता जी के यहां पर भिक्षा मांगने के लिए, सीता जी समझ गई थी, भगवान श्री राम कह चुके थे, ये सब कुछ प्लान से हो रहा था। ऐसा बात नहीं है कि राम जी को मालूम नहीं, सब मालूम था। और असली सीता चली गई और माया सीता आई। तो जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो माया का ही अंगीकार करते हैं, माया को ही स्वीकार करते हैं। सीता जी को स्वीकार करें तो कल्याण हो जाएगा, सीता को स्वीकार करना मतलब राम को स्वीकार करना। सीता जी राम से अलग हो ही नहीं सकती है, जैसे नमक से या चीनी से मिठास कोई अलग करने का प्रयास करे, सूर्य से प्रकाश कोई अलग करने का प्रयास करे, पानी से पानी की शीतलता और तरलता कोई को अलग करने का प्रयास करे, नहीं है, असंभव है। तो सीता जी को समझना जानना हम लोगों के बस की बात नहीं है, भौतिक इंद्रियों से सीता जी को नहीं समझ सकते हैं, भौतिक इंद्रियों से भौतिक वस्तु को ही समझ सकते हैं। आजकल ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कि अपने भौतिक इंद्रियों पर इतना अभिमान कर करके और सीता जी को और राम जी को समझना चाहते हैं, और क्या अपना स्पेकुलेशन देते हैं, कहते हैं राम ने बड़ा अनजस्ट किया, क्या किया, सीता को त्याग दिया, वो भी वैसे परिस्थिति में जब वो गर्भवती थी, यही कहते हैं ना, इसलिए हम राम का भजन नहीं करते हैं। अरे मूर्ख कहीं का, ये जमाना सतयुग था पहला नंबर, और आज तुम कलयुग में है, अब सतयुग में जो हुआ था उसे शिक्षा लो ना, उसे शिक्षा लो, शिक्षा लेनी चाहिए। उतना ही नहीं, सीता जी क्या तुम्हारे पास कंप्लेन करने आई थी क्या कि राम ने हमको छोड़ दिया, मैं गर्भवती थी। आजकल के मूर्ख स्त्रियां जो हैं वो ज्यादा इस पर बवाल करती हैं राम के विरुद्ध में, वेस्ट में तो बहुत इसका ये है, उनसे पूछना चाहिए कि सीता जी तुमसे कंप्लेन की थी क्या, अरे उनको जब अच्छा लग रहा था तुम्हें क्या तकलीफ था, जब उनको कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें क्या तकलीफ है। यदि सीता जी को कोई तकलीफ हुआ था तो एक ही तकलीफ हुआ था, जब लक्ष्मण जी गंगा पार कर करके सीता जी को छोड़ करके और सब बात बता दिए थे। हालांकि जब माता सीता गर्भवती हुई थी उस बात को जब भगवान राम से कही थी, उसके कुछ दिन के बाद ही देवता लोग आए थे और माता सीता से स्पेशल प्रार्थना किए थे कि अब सब काम खत्म हो गया, अब चलने का समय आ गया है, हे माता जब तक से आप नहीं जाएंगी तब तक से प्रभु कैसे जा सकते हैं, जब तक से सूर्य का किरण लुप्त नहीं होगा सूर्य कैसे लुप्त हो सकता है, किरण से ही सूर्य को हम पहचानते हैं, तो हे माता कुछ आपको करना पड़ेगा, अब चलने का समय आ गया है। और माता सीता यह बात जाकर के प्रभु राम से कही थी, तब भगवान राम ये प्लान किए थे सीता को एबेंड करने का, और बिल्कुल प्लान पूर्वक हुआ था, कोई ऐसा नहीं था। जब लक्ष्मण जी सीता जी को बतलाए कारण कि क्यों भगवान श्री राम ने आपको एबेंड किया है, तो सीता जी तो दुखी थी ही, होना भी चाहिए सामान्य स्त्रियों को, लेकिन उन्हें अपने लिए दुख नहीं था, उन्हें दुख था कि आज के बाद प्रभु श्री राम कैसे सो पाएंगे, भगवान श्री राम के लिए उन्हें दुख था। सीता जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैं प्रभु श्री राम का पाद संवाहन नहीं की, उनका पैर नहीं दबाई, और जब मैं उनका पैर दबाती थी तभी वे निद्रा को प्राप्त करते थे, अब मैं नहीं हूं, पैर नहीं दबाऊंगी तो कैसे सो पाएंगे, इसलिए हे भैया लक्ष्मण यह काम दूसरा नहीं कर सकता है, केवल आप ही कर सकते हो, इसलिए जगत जननी सीता ने इस सेवा का भाव लक्ष्मण जी को दिया था। लेकिन भगवान श्री राम जब इस धराधाम को छोड़कर जाना था तो सबसे पहले काम क्या किए, सेवा को स्टॉप किए, सेवा और सेवक को स्टॉप किए। एक दिन की बात है, देवता लोग आए थे भगवान से मिलने के लिए, पहले सीता जी से कहे थे और भगवान श्री राम से कहने के लिए आए थे, और कुछ विशेष बात करना था, गंधर्व के रूप में आए थे। तो उन्होंने कहा कि आपसे अकेला बात करना है और कोई हम लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए, बड़ा सीरियस बात है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाए और कहे तुम बाहर रह करके पहरा देना, देखना कोई भी अंदर ना आ जाए, और किसी प्रकार से कोई आ जाता है तो उसे मृत्युदंड दी जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा स्वीकार है। लक्ष्मण जी स्वीकार कर करके बाहर पहरा दे रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। वो भगवान राम से मिलना चाहते थे, अब सब लोग जानते हैं दुर्वासा ऋषि के विषय में। अब लक्ष्मण जी बड़े फेरे पड़ गए, अब क्या करूं, अब जाकर के प्रभु राम को बतलाता हूं कि दुर्वासा जी आए हैं तो मुझे मृत्युदंड मिलेगी, और नहीं जाता हूं तो दुर्वासा जी के साप का कोप भाजन होना पड़ेगा, उनके कोप का साप दे देंगे, और पता नहीं क्या श्राप दे देंगे, कौन जानता है वो भी। इसलिए अच्छा है कि मेरा चला जाए, मेरा जीवन चला जाए, मुझे मृत्युदंड मिल जाए, वो स्वीकार है, लेकिन दुर्वासा जी का श्राप स्वीकार नहीं है। अब लक्ष्मण जी खटखटा करके दरवाजा पहुंच गए राम जी के पास, और जब ही लक्ष्मण जी प्रवेश किए वो गंधर्व लोग वहां से, देवता लोग जो थे गंधर्व ग्रुप में आए थे, उस वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब लक्ष्मण जी जब आए तो भगवान श्री राम देखे, अब हक्का बक्का रह गए भगवान श्री राम के, अरे अब मैं क्या करूं, जिस लक्ष्मण ने मेरा इतना सेवा किया, बिना खाए पिए बिना सोए मेरा सेवा किया, उस लक्ष्मण को मैं प्राण दंड दूं। अब भगवान श्री राम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को रिटायर कर दिया, सेवानिवृत्ति करा दिया कि अब आपका काम हो गया, अब चलिए। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि यदि प्रभु श्री राम का सेवा नहीं कर सकता हूं, जो कि हमारी माता ने हमको यह सेवा दिया था, यदि ये सेवा नहीं कर सकता हूं तो जीवन धारण करने से क्या फायदा, इसलिए लक्ष्मण जी धराधाम को छोड़कर के चले गए। पहले सीता जी गई, बाद में लक्ष्मण जी गए, और बाद में भगवान श्री राम समस्त साकेत वासियों को लेकर के इस धराम से चले गए। तो इसे शिक्षा लेनी चाहिए कि भक्तों के जीवन तब तक से है जब भगवान का सेवा होता हो, जब भगवान का सेवा हो रहा है तो हम लोगों का जीवन ठीक ठाक है, भक्ति का जीवन। यदि सेवा नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि जानिया सुनिया भी सखाइनो, सेवा करना हमारा धर्म है। प्रभुपाद जी कहते हैं मिनिमम 16 राउंड एंड मिनिमम 8 आवर सर्विस, जिसको भी भक्त बने रहना है, न कि टेम्पल कमांडर पीछे पड़े, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पीछे पड़े, अपने से अपने को लगाना चाहिए सेवा में, कम से कम मिनिमम 8 घंटा सेवा हो और मिनिमम 16 माला जप हो, तब तो हमारा भक्ति टंच रहेगा, ठीक रहेगा, और तब हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो बल्कि आत्महत्या कर लेना अच्छा होगा। जैसे लक्ष्मण जी, आप लोग करना मत, कल सेवा करना, मैं वो नहीं करूंगा, आत्महत्या कर लो, सेवा करो। लक्ष्मण जी वैसा ही किए, और जगत जननी सीता भी, तो सीता जी को सबसे बड़ा दुख था कि प्रभु का सेवा कैसे हो सके। एनीवे, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और चलें क्या? प्रसन्न साहब, एकाद दो कथा और कहता हूं, एकाद दो कहानी और करता हूं। सीता जी के त्याग को देखा जाए, मैं लाया था बहुत कुछ माल मटेरियल लाया हूं बहुत कुछ, लेकिन समय नहीं है, भागवत सप्ताह हो जाएगा इस पर, तो सीता जी पर। एनीवे, सीता जी का जीवन दूसरों के लिए दुखमय रहा है, बाह्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीता जी दुखमय रही है। सीता जी से स्त्रियों को शिक्षा लेनी चाहिए कि सीता जी में कितना सौहार्द था, कितना प्रेम था, किसी के प्रति कभी कटु वचन नहीं बोली है। स्त्रियों को सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए कटु वचन कभी नहीं बोलना। ये जिह्वा है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए जिह्वा कुछ भी बोल देता है। इसलिए बुद्धि रूपी हड्डी का प्रयोग करना चाहिए बोलने से पहले, नहीं तो इसी जिह्वा से मैं कथा कह रहा हूं, कितना अच्छा आप लोग सुन रहे हो, और कुछ और बात करना सुनो, सब मिलकर मारोगे मुझे, है ना, एक सेकंड में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझे कहने का मतलब क्या मैं कह रहा हूं ना। तो जिह्वा हमारे यहां बिहार में कहते हैं, जिह्वा से लोग पान भी खाते हैं और पनही भी खाते हैं। पनही समझते हो, जूता, और पान मतलब पान, बिहारी भी बहुत पान लोग खाते हैं, इधर पान नहीं खाते हैं, तो पान भी लोग खाते हैं पनही भी खाते हैं, जिह्वा को शुद्ध नहीं रखा जाए। तो स्त्रियों को स्पेशली चाहिए कि जिह्वा को पवित्र हमेशा बनाए रखें, सबको चाहिए लेकिन मुख करके स्त्रियों को, और जिह्वा की पवित्रता होगी भगवान का नाम लेकर के, भगवान सम्यक बात कर कर करके, हरे कृष्णा 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 हरे राम यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो जिह्वा तुरंत अपवित्र बन जाएगी और प्रजल्प में लग जाएंगे, तुरंत, कोई समय नहीं लगेगा। और प्रजल्प जो है वो डिस्ट्रक्शन का कारण है। द्रौपदी, सब कुछ ठीक चल रहा था, जिह्वा से एक बार बोल दिया कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं, महाभारत हो गया, महाभारत हो गया। वैसे ही सीता जी अपने जीवन काल में केवल एक बार कटु वचन बोली है, बस, वह तब जब मारीच हा लक्ष्मण हा राम कहकर पुकारा और लक्ष्मण जी नहीं जाना चाहते थे, तो सीता जी ने जिह्वा का दुरुपयोग कर करके कटु वचन बोल दिया कि अब मैं समझ गई कि तू जंगल में क्यों आया था, तुम मुझे अपनाना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो तुम्हारा भाई मर जाए और तुम मुझे लेन प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो। और जब सीता जी ऐसा कटु वचन बोली तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया द्रौपदी के कटु वचन से, और राम रावण युद्ध हो गया सीता का। यदि सीता जी ये बात नहीं बोली होती, लक्ष्मण जी का बात मान ली होती, तो राम तो मारीच को मारिए दिए थे, आ ही गए होते, और रावण का बाप भी वहां नहीं आता लक्ष्मण के सामने, ये सब काम होता ही नहीं, लेकिन गड़बड़ हो गया कटु वचन बोल करके। तो स्त्रियों को सीखना चाहिए कि कटु वचन न बोले। पुरुष कभी कभी बोल देते हैं, उनको भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पुरुषों में पुरुषत्व का स्वभाव होता है। दुख की बात है, आजकल की स्त्रियां स्त्रीत्व को भुला बैठी है, पुरुषत्व को प्राप्त करना चाहती है, बाल कटाती है, पैंट शर्ट पहनती है, घर में भोजन नहीं बनाएगी, होटल में खाने जाएगी। अरे भोजन बनाओगे तो मां का हृदय बनेगा, भोजन बनाने से मां का हृदय बनता है, और भोजन नहीं बनाओगे तो पत्थर का हृदय बनेगा, और क्या होगा। पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए जो स्त्रियां भोजन बनाती है उसका हृदय देखो, मां का हृदय होता है, और मां हमेशा रक्षा करने वाली होती है। लेकिन दुख की बात है, आजकल के मॉडर्न युग में लोग सिरपणखा बनते जा रहे हैं, सब सिरपणखा। तो सीता से सीखना चाहिए, सीता का व्यवहार टिल माताजी माय वाइफ माताजी टिल माय वाइफ से इधर। बस एक कथा और कहूंगा, आज हमारे चेयरमैन साहब गुप्ता जी का वेडिंग एनिवर्सरी तो आ गए हैं, बधाई हो गुप्ता जी। सीता जी का सबके साथ में इतना सुंदर व्यवहार था, पशु पक्षियों के साथ में, दास दासियों के साथ में, सबके साथ इतना सुंदर व्यवहार था, इतना सुंदर व्यवहार था कि जब धनुष भंग हो गया, जनक जी अपना दूत भेजे अयोध्या, और जब महाराज दशरथ सुने कि अयोध्या जनकपुर से दूत आया है और राम और लक्ष्मण के संबंध में जब सुने तो बड़े प्रफुल्लित हुए, और जब यह सुने कि भगवान शिव का जो धनुष था, यह धनुष प्राप्त हुआ था दक्ष यज्ञ के बाद, भगवान ने देवताओं को दे दिया था और देवता लोग दिए थे इस धनुष को महाराज निमि को, महाराज निमि के पूर्वजों को, और इस प्रकार से जनक जी के यहां पर वह धनुष था। वैसा ही धनुष परशुराम जी के हाथ में था। एक दिन परशुराम जी महाराज जनक के घर पर आए थे और धनुष को बाहर रख करके घर के अंदर आतिथ्य स्वीकार करने गए। सीता ये छोटी बच्ची थी, आ करके धनुष उठा करके उसको घोड़ा बना करके चलने लगी, धनुष पर चढ़ कर करके। जब परशुराम जी आए देखे धनुष वहां पर नहीं है, उन्हें आश्चर्य हुआ कि धनुष, इतना भारी धनुष, इसका वर्णन किया गया है रामायण में कि हजार लोग मिलकर के धनुष को लेकर के आए थे। कहीं अन्यत्र कथा आती है कि एक दिन सीताजी में इतना सौहार्द था कि जब दासियां घर का काम करती थी, सीताजी राजकुमारी थी लेकिन वो भी अपने हाथ से काम करने लगती थी। जहां पर धनुष रखा गया था चंदन के चौकी पर, सीताजी बहुत दिन से सफाई नहीं हुआ था, वो धनुष को उठा करके दूसरे जगह रह करके और उस सफाई की थी, इतना भारी धनुष। इसलिए जनक जी उसको कहते कि सीता का विवाह उससे होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। कमे बराबर होना चाहिए, बराबर शादी होना चाहिए, बराबर के, अरे कम से कम नीच छोटा नहीं तो बराबर तक, बड़ा नहीं करना चाहिए। एनीवे, तो जब दूत गए थे तो महाराज दशरथ बड़े खुश थे, और खुश होकर के दशरथ जी जब दूत लोग आ रहे थे तो अपने गले से नवरत्न हार निकाल करके और दूत को दे रहे थे। दूत हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, आप क्षमा करेंगे, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको लेकिन हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कहा क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? कहा कि इसलिए कि हम लड़की पक्ष के हैं, सीता हमारी पुत्री है। तो महाराज दशरथ ने कहा कि सीता ही तो जनक नंदनी है, जनक जी की पुत्री है, आप तो वहां के सेवक हो तो आपकी पुत्री कैसी हुई? तो सेवक ने कहा कि सीता जी ने हमको सदैव बाप के समान ही मुझे माना है और मैं सीता को हमेशा अपने पुत्री के रूप में माना हूं, इसलिए पुत्री के यहां से मैं कुछ ले नहीं सकता हूं। और वैसे भी जगत जननी सीता धरणी की पुत्री है, पृथ्वी की पुत्री जो है वो धरणी की पुत्री है, जनक की ही पुत्री नहीं है, पूरे जनकपुर वासियों की पुत्री थी। जब सीता का विदाई हो रहा था तो सीता एक एक दास दासियों से मिल करके आ रही थी और सब लोग रो रहे थे, पशु पक्षी तक रो रहे थे सीता जी के विदाई में। तो सीता जी के बहुत से गुण हैं, सीता जी का त्याग, सास ससुर से व्यवहार, पति से व्यवहार, देवर लोगों से व्यवहार, पुत्रों से व्यवहार, गुरुजनों से व्यवहार, ये पूरा रामायण है। यदि सीता जी की कथा न हो तो रामायण पूरा नहीं। वाल्मीकि जी सीता जी के कैरेक्टर को राम के कैरेक्टर से कहीं ऊपर रखे हैं, बहुत ऊपर रखे हैं। और ऐसे भी जननी है, जन्मदात्री है, जन्म देने वाली है, संस्कार को जन्म देने वाली, जो माताएं होती हैं वो जननी होती है, जन्म देने वाली। हम लोग अपने मां के गर्भ में थे, संस्कार प्राप्त हुआ मां के गर्भ से, जन्म लेते हैं वो भी संस्कार मां से प्राप्त होता है। माता अपने हाथ से भोजन बनाती है, खिलाती है, सिखाती है, सब कुछ मां से प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग मां के चीर ऋणी हैं, माता सीता के हम लोग चीर ऋणी हैं। तो इस प्रकार से मैं संक्षिप्त में यहां पर सीता जी के विषय बताया, कहने के लिए बहुत कुछ है। सीता मैया की जय। धन्यवाद। तो हम लोग यहीं विराम देंगे, अब 11:30 बजे अभिषेक की भी तैयारी करनी है सब लोग। निमार्का आप रेडी हो? धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु विष्णु